चलिए तफसीर देखेंगे इंशाल्लाह बिनी आयत की। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सद्री व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। सूरत तौबा को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला मुख्तलिफ़ हालात में डालकर यानी मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में डालकर हमारे ईमान का इम्तहान लेता है। ये बात बड़े गौर से सुनने की है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ हालात में डालकर हमारे ईमान का इम्तिहान भी लेता है और हमें खुद पर भी आश्कार कर देता है और दूसरों पर भी। आम हालात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद लोग घुले मिले रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, उनको एहसास भी नहीं होता इस बात का कि वो अल्लाह की निगाहों में कितना ऊपर जा चुके हैं अपने किसी एक छोटे से अमल की वजह से या दिल की सच्चाई की वजह से या किसी मुश्किल हालात में नेकी करने की वजह से। इसी के बरक्स बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की नज़रों से एक इंसान कितना नीचे गिर चुका होता है, या ऐसे ही कि जैसे किसी से उम्मीद बहुत अच्छे की हो लेकिन वो सिर्फ़ अच्छा कर ले, तो ऐसे वक्त में भी इंसान को पता नहीं चलता। अब एक सूरत यह कि सारी सिचुएशन की असल हकीकत क़्यामत के दिन जाकर खुलती, तो ये तो बड़ी ख़तरे की बात है क्योंकि क़्यामत के दिन जाकर पता लगा तो क्या फ़ायदा। ये तो ऐसी है जैसे रिज़ल्ट वाले दिन किसी स्टूडेंट को अपनी गलतियों का पता चल जाए। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इसका एक बड़ा खूबसूरत तरीका रखा। दुनिया में हमें मुख्तलिफ हालात में डालता है और ये मुख्तलिफ मौके होते हैं इस बात के कि हम अपने ऊपर गौर करें। आज के सबक के आगाज़ में हम एक ऐसी नेकी की बात पढ़ेंगे कि जिसको करने के लिए हर मसलक, हर फिक, हर गिरोह, हर कल्चर का मुसलमान बेचैन है। मैंने तो बचपन से जिस नेकी को नमाज रोज़े के बाद शौक़ से और ख्वाहिश के साथ करते हुए देखा या जो नहीं कर सके उनकी हसरत बनते हुए देखा, वो कह के अल्लाह हमसे कोई मस्जिद बनवा ले। अपने ख़ानदान के कई बुज़ुर्गों का नाम इस वक्त जहन में आ रहा है इन बातों को करते और सुनते हुए वक्त कि जो अपनी ज़िंदगी में नेकी के लिए मारूफ थे इस बात पर कि उन्होंने कितनी मस्जिदें बनवाईं, कितने हज और उमरे किए। आज के सबक का जो बहुत ही ज़्यादा इंसान को हिला देने वाला तसव्वुर है ना, वो क्या है कि हर नेकी ज़रूरी नहीं कि नेकी हो। दूसरी बात, ज़ाहिर के नेक बातिन के बद हो सकते हैं और अपोज़िट भी है। बज़ाहर के मस्जिद को गिराने वाले काम तो बड़ा ख़राब लग रहा है लेकिन वो अल्लाह के नबी हो सकते हैं, नेक लोग हो सकते हैं। काम नेकी का मिल जाना ये ऐसी है जैसे एक अपॉर्चुनिटी का खुल जाना। किसी को उसकी कुर्सी पे बिठा दिया, ऑफिस में बिठा दिया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई भी नाम सोचिए, किसी बहुत अच्छी पोस्ट पे किसी को बिठा दिया, ये तो है उसका बिठाया जाना, पर वहाँ बैठकर वो क्या करता है? असल तो ये बात है ना, देखिए तनख्वाह ले कोई कंपनी से और प्रोटोकॉल कंपनी का मिले उसको और इसके साथ साथ ही वो उनकी सारी सहूलतें, उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल करें और काम वहाँ बैठकर वो कंपनी के ख़िलाफ़ करें। मिसाल है, वर्स बात तो यही है ना। चलें कुछ और ना करें, हम उसकी बात नहीं करते, उसी कंपनी को ढाने की कोशिशें करें, तो मुझे बता सकते हैं कि जब पोल खुलेगा तो वो कंपनी वाले उसको क्या कहेंगे? बस ये है सबक। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर गुनाहगार गुनाहगार नहीं होता। उसके हालात और वाकयात को देखने से पहले कुछ बात नहीं करनी चाहिए। आयतें पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका हल्का सा खुलासा और फिर किस शान नज़ूल में ये नाजिल हुई उसको देखेंगे। आयत 107 107 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वल्लज़ीन तख़ज़ू मस्जिदा। यहाँ कौमा लगाएं क्योंकि मैंने आपको कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जहाँ मैं रुकती हूँ ना, अगर आप वहाँ कौमे लगा लिया करें तो आयत की असल रूह आपको मिलेगी उसमें इंशाल्लाह। वल्लज़ीन तख़ज़ू मस्जिदा, और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई। हम तो खुश हो गए, माशाल्लाह मस्जिद बनाई, बस इनकी तो 7 पुश्तें बख्शी गईं और इनके लिए तो अब जन्नत में जाना लाजिम हो गया, लिखा हुआ वीज़ा मिल गया, पासपोर्ट मिल गया और बिल्कुल नो एंट्री वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 करके लिखिएगा मकासित। बना तो मस्जिद ली, किया तो दीन का काम, बनाया तो दीन का इदारा, लेकिन मकासिद क्या थे, गोल्स क्या थे उनके? नंबर एक, दरारन, ज़रर पहुंचाने को, नुकसान पहुंचाने को। किसको? ऑफ कोर्स इस्लाम और मुसलमानों को। दूसरा मकसद, व कुफ्रन, कुफर के लिए है। मस्जिदें तो अल्लाह के लिए होती हैं, अन्नल मसाजिद लिल्लाह, तो मस्जिद और कुफर जी, क्योंकि ये अंदर खाते अल्लाह से ना शुक्री और ना कुफरी ही की बात थी। तीसरा उनका मकसद था, व तफरीकम बैनल मुमिनीन, और अहले ईमान में तफरका डालने के लिए, तफरीक पैदा करने के लिए गिरोहबाजी थी। मेरी मस्जिद में कौन आता है और तुम्हारी में कौन आता है, ये बात। और चौथा मकसद, व इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू मिन कब्ल, और इन लोगों को घात, यानी घात कहते हैं वो जगह जहाँ पे दुश्मन के ऊपर हमला करता जानवर, घात लगाने की जगह, यानी घात फ्राहम करने के लिए जो पहले से अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं। चार चीज़ें हैं इसके अंदर, यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, देखने में साफ लग रहा है कि ये किसी एक ख़ास वाक़े की तरफ है। और यहाँ जो लफ्ज़ है ना, दिरार, दिरारन दरर से है, बाब मुफाइला। उन्होंने मस्जिद बनाई, क्यों बनाई? ज़िद के लिए बनाई, मुकाबले में बनाई, दावते हक को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई। ये कौन सी मस्जिद है? कुबा के एक इलाके में एक खैर मस्जिद मुनाफिकीन ने बनाई थी। इसकी तामीर के पीछे जो नाम था वो था अबू आमिर राहिब। इसका ताल्लुक कबीला खजरज से था। ज़माने जाहिलियत में ईसाइत कबूल करके राहिब बन गया था, जैसे बरका बिन नौफल ईसाई हो गए हुए थे ना, वही की तरह कि जब उस दौर में किसी को हक़ की तलाश होती थी तो लोग ढूंढते ढांढते फिर क्रिश्चियनिटी तक पहुंच जाते थे। यानी ये कुफर छोड़कर ईसाइत में गया, ये कह लें, और ईसाइत में गया तो राहिब बन गया। यानी राहिब भी वो होता है जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो, यानी बहुत दरवेश टाइप। अहले अरब में अहले किताब के बहुत बड़े आलिम के तौर पर पहचाना जाता था, यानी वेल नोन आलिम था, जैसे कि वरका बिन नौफल करशी थे, और उन्होंने भी बुत परस्ती छोड़ी और ईसाइत इख्तियार की। इतने बड़े आलिम थे अपने दौर के तौरात इब्रानी में लिखा करते थे। लेकिन वो बहुत नेक फितरत और सलीम उत्तबा शख्स थे, और जब हज़रत खतीजा अल्लाह के नबी को उनके पास लेकर गईं तो उन्होंने सबसे पहले आपकी नबूवत की तस्दीक की और फरमाया कि आपके पास तो वही नामूस आया जो कि मूसा और ईसा के पास आया, और काश मैं उस वक़्त तक ज़िंदा रहूँ जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी। तो अल्लाह के नबी ने हैरत का इजहार किया, क्या मुझे निकालेंगे? तो आप, उसने कहा कि हाँ, मामला ऐसा ही है, जिसने भी हक़ की दावत दी कौम उसकी दुश्मन होगी। ये तो थे वरका बिन नौफल, लेकिन अबू आमिर राहिब का रवैया बिल्कुल बरक्स था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद तरीन दुश्मन बन गया। कुरैश मक्का की बदर में शिकस्त के बाद ये शख्स मक्का में जाकर आबाद हुआ। और क्या हुआ था फतेह बदर के बाद? अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमान हुआ। वो मदीना में रहा, घर में रहा, लेकिन अंदर से खोटा था। ये छोड़ के मक्का गया। वहाँ गया तो मुसलमानों के खिलाफ अहले मक्का को खूब उकसाया। गज़वे उहद के पीछे इसी की साजिशें कारफरमा थीं, बल्कि मैदान उहद में जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो इसी ने लश्कर से बाहर निकलकर मदीना के अंसार को खिताब करके इनको वरगलाने की कोशिश की थी। याद है आपको बातें कि हम अंसारी हो, तुम चले जाओ, हमारी तुमसे कोई जंग नहीं, ये क्रैशी हमें वापस कर दो, हम तो अपने लोग लेना चाहते हैं। खैर, उहद के बाद और भी जो जंगें हुईं, हर एक में ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ रहा। इतने में हुनैन की जंग का मौका आ गया। हुनैन की जंग के बाद जब इसे ये महसूस हुआ कि अब अरब में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही, क्योंकि इस्लाम फैलता जा रहा था और वो लोग जो इस्लाम की तरक्की नहीं देख सकते, फिर उनको तो वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था, मायूस हुआ और मुल्क शाम चला गया। वहाँ जाकर अब मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गया। और इसके रबते किन से थे? मदीना के मुनाफिकीन से मुसलसल रबते रखता। अब इसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए ना, मदीना के मुनाफिकों से इनका रबता था, तो वो कौन लोग थे? मुसलमान थे ना। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि हम इसका साथ खुल के दें, और वो अंदर की खबरें लेना चाहता था, मस्जिद नबी में क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, कहते क्या हैं, सुनते क्या। और याद रखिए, जो लोग किसी काम में ना करने ना कराने के, वो ज़्यादा ख़बरें रखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सीखने की नीयत से आते हैं, सीख रहे होते हैं, और कुछ आते नहीं लेकिन वो खबरें पूरी रखते हैं क्योंकि उन्होंने अंदाजे लगाने होते हैं, आज क्या हुआ कल क्या हुआ, कोशिश करने वालों के साथ क्या हुआ, ना करने वालों के साथ क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसका प्रॉब्लम था कि ये मुनाफिकीन से कुछ डायरेक्ट रब्ता करे। अब हुआ क्या, मसला कैसे, रखता कैसे? उस वक्त ये तो नहीं थे ना कि आपके हाथों में सेलफोन पकड़े हुए और आप एक दूसरे को खड़े होकर चुपके चुपके बैठ के बातें कर रहे। प्रॉब्लम क्या था कि मस्जिद नबी में बात करें उनसे तो वहाँ बाकी साथी भी हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इधर से उधर है। इसकी ज़रूरत क्या थी कि मदीना में कोई एक अपना हेड ऑफिस बना ले, मीटिंग रूम बन जाए, कोई ऐसी जगह के जिधर अगर ये जाके मीटिंगें करें या कोई लोग इससे बातें उधर की इधर करें तो फिर दूसरे आम मुखलिस सहाबा को बताना चले। बात समझ गए? चुनाचे अब ये मीटिंग रूम कैसे बनाता, मदीना मुसलमानों की स्टेट थी, ज़ाहिर है NOC लेना पड़ता, कोई इजाज़तनामा, कोई कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता था। अब क्या हुआ, जब ये सारा लेना पड़ा तो उसको पता था कि मदीना में एक नाम पे अगर कुछ काम करूँगा तो वो इतने कान नहीं खड़े होंगे, और वो मस्जिद है, यानी दीन के पर्दे में बेदीनी का काम करने लगा था। चुनाचे इसने एक मस्जिद तामीर की, कुरान उसको मस्जिद दरार कहता है। हकीकत में वो इनकी साजिशी कोशिशों की एक किस्म की कमीनगार, इनके फितनों का मरकज़ थी। खैर, अल्लाह ने तारुफ करा दिया, आगे क्या होगा जब बात खुलेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना। जब आप पूछेंगे भाई ये क्या मस्जिद है, ये क्यों बनाई, इसका क्या मकसद था, तो वो कस्में खा खा कर कहेंगे हमने तो नेकी का इरादा किया है, देखे ना कितने अच्छे जज्बों से हम नेकी का काम कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, कोई छोटी बात है, ये है वो है। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये अलबत्ता झूठे हैं। ज़रा सोचिए किसकी बात सच्ची है, यानी जब आप इनसे पूछेंगे, जवाब तलबी करेंगे तो ये मुनाफिक कस्में खा खा करके अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे, हमारी नीयत बुरी नहीं, हमारे इरादे बड़े अच्छे हैं, नेकी ही का तो ये भी काम है। अब ज़रूरी थोड़ी हर नेकी मस्जिद नबी के अंडर ही हो, सारी चीज़ों पे आप ही का नाम लगा हो, स्लोगन आपका हो, आपके अंडर हो, हम अपने ओन पे अकेले में भी तो एक काम कर सकते हैं, ये लिख लीजिए अब मेन स्ट्रीम से अलग हो के नेकी का काम करने वाले। और वल्ला ही ऐसे लोग बहुत कम मैंने फलते फूलते देखे, मेन स्ट्रीम से हटकर जो दीन का काम करेगा। मेन स्ट्रीम क्या होती है, आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, कुछ अरसा आप उसमें रहते हैं, आपका भी दिल खुलता है और आप भूल जाते हैं कि यही वो जगह है जिसने आपको अल्लाह से मिलाया था। किसी छोटी सी बात पे किसी साथी से इख्तलाफ हो रहा है, मैनेजमेंट से मसला, टीचर से मसला, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है नफसियाती तौर पे, आप कहते लो अब हम भी इनको करके दिखाते हैं। कॉन्टैक्ट्स तो पहले ही आप ऐसे लोगों के पास होते हैं, रबते भी बड़े हैं उनसे, उनसे पकड़ दो चार, टीचर पकड़े, उनको पकड़ा, इमाम को पकड़ा, एक नई जगह बना ली। वो कहते हैं ये भी तो नेकी है, ज़रूरी है कि इनका नाम ही लगे, वो नेकी नहीं होती। याद रखिए उसके पीछे नेकी का कॉन्सेप्ट ही मजरू होता है, वजह क्या है, यहाँ आप नोट करेंगे अब इंशाल्लाह। इस्लाम की एक बुनियाद है, मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो इस्लाम ने हमें एक शख्स के साथ शादी करके जोड़ दिया है ना, यही बुनियाद दीन की भी है। ये एक साइड का लिख ले क्योंकि आज का टॉपिक ही अभी शुरू में ये है इस हिस्से का। जब आपका किसी नाम के साथ नाम जुड़ जाता है ना, ये ऐसी है जैसे किसी मर्द के साथ आपका निकाह हो गया, अब उसके बाद लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, आप उसकी बीवी, आप उसकी बहू, और आगे आप उनकी माँ या जो भी फैमिली टाइज होती हैं। अच्छा हो बुरा हो, गुजारा हो रहा है तो आप वहीं रहेंगे ना, ये आपका उसके साथ एक तारुफ है। घर के अंदर जितने मर्जी मसले हैं, बाहर बड़ी इज्जत होती है, बेगम फलां, घर में लड़ते ही रहते रहे, वहाँ मिसिज फलां, मिसिज फलां, मिस्टर फलां, बड़ी इज्जत होती है घर, बंदे की इज्जत हो जाती है, ये चलता रहता है। फैमिली टूटने लगती है तो आप देखिए दो घर नहीं, दो खानदानी, बल्कि पूरी आपके इर्द गिर्द की सोसाइटी में बातें होती, क्या हुआ कैसे हुआ, लड़के का कसूर, लड़की का कसूर, माँ का कसूर, बहनों ने भड़काया, कितने मसले होते हैं। पहले तो लोगों को एक अजीब वगरीब अफरा तफरी मिलती है, खैर अल्लाह अल्लाह करके 2 ढाई 3 साल के प्रोसेस के बाद तलाक होती है। अब आगे उनकी नज़रें लगती हैं, अब किधर होगा, अब किधर शादी होगी, ये होगा, अच्छा उसने कर लिए, लड़के की नहीं हुई, लड़की की, बच्चों का, आप समझ गए ना अब ये सारा सिनेरियो। अब जब आप दूसरी जगह पे जाकर कहते हैं कोई बात नहीं, बीवी बनना तो उसकी नहीं बनी, इसकी नहीं, अब मैं ये नहीं कह रही कि सब जगह फितने ही होते हैं, लेकिन 1 2 ढाई 3 साल का प्रोसेस होता है, फिर कहीं लड़की जाके दूसरे घर में सेट होती है, अल्लाह करे कि वो भी सेट हो जाए, ऐसी है ना। अब ये सारा जो फेज होता है ना खानदानी सतह पे, यही फेज बिल्कुल दीन के नाम पे भी दोहराया जाता है जब कोई बंदा मेन स्ट्रीम से हट के दूसरी तरफ जाता है और नुकसान उठाता है। असल में ये जो गिरोह जिसकी कहानी यहाँ पेश की जा रही है ना, ये गिरोह कुछ इसी किस्म का गिरोह था। देखिए, अल्लाह का नबी, उनसे ज़्यादा बाहिकमत, उनसे ज़्यादा बाखलाक, उनसे ज़्यादा मामला फहम कोई शख्स हो सकता है दुनिया में? अब वो आमिर को उनसे भी इशू था, अब्दुल्ला बिन उबई को उनसे भी इशू था, और वो 70 लोग जो कि जान लेने के दर पे पड़ गए उनको भी नबी से इशू था। तो क्या ये नबी का इशू था कि उनका इशू था? उनका इशू है, नबी ठीक थे। याद रखिए, एक ही बंदा होता है। आप प्यार से देखेंगे आप कहेंगे बहुत प्यारे लग रहे हैं, और आप गुस्से से और बहुत और इनाज से देखें आप कहेंगे देखो क्या लग रहे हैं, ये कोई इनको करना चाहिए। बात समझ गए? तो जब दिलों में खोट आता है ना, जब दिलों में कोई दूसरी सोच आती है, तो अच्छी चीज़ बुरी लगने लगती है, सीधी सी बात है। खैर, अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि नाम ये नेकी कह लेंगे, और आपने ऐसी मस्जिदें टूटती देखी होंगी, रातों रात मस्जिदों में एक दीवार खिंचती है और दूसरी तरफ, यानी ऐसी ऐसी तल्ख यादें हैं मेरे दिल में जो मैंने इधर उधर जमा की हुई हैं, सुनी हुई हैं, भूलती नहीं है कि ईशा तक लोग नमाज पढ़ के गए हैं तो एक ही मस्जिद थी, तो जब लोग फजर पे आए हैं, फजर पे, तो क्या पता चला कि बीच में बाड़ है तारों की डाल दी रातों रात, और पिछला डोर खोल के उस पर एक दूसरा नाम और उधर, और वहाँ कोई बंदा खड़ा जी नहीं, अब ये दो मस्जिदें हो गई, आपको किधर जाना है? रात को ये हुआ, फजर की नमाज पे दो मस्जिदें थी, और यूं पुश्त मिली हुई थी, जैसे एक घर की पुश्त मिली होती है, एक डोर बैक डोर और एक फ्रंट डोर। इस तरह की कहानियाँ मौजूद हैं हमारे मुल्क में, तफरीकन और इफ्तफर के जब पढ़ते हैं, और फिर जो शहर में क्योस पड़ता है, अल्लाह की बना, बाप उधर जा रहा है तो बेटा उधर, बीवियाँ इधर के साथ एसोसिएटेड हैं तो मर्द उधर है, हर शहर हर मुल्क में ऐसी कोई ना कोई याद होगी। अल्लाह सुबहान तआला इस्लाम की असल पे नज़र रखने की बात करता है कि नेकी के नाम पे ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेकियाँ, और इरादे क्या करते थे, नहीं देखे ना, फिर वो मस्जिद दूर पड़ती थी, ये थी वो, फिर हम सारी नमाजें जमात से तो पढ़ ही नहीं सकते, दूर है ना इसलिए, और ये नहीं पता कि जिसको नहीं पढ़नी उसने करीब भी कोई नहीं पढ़नी, और जिसने अल्लाह के बंदे ने पढ़नी है उसने दूर भी पढ़ा नहीं है, जिसने हजर में नहीं पढ़नी उसने सफ़र में कहाँ जमात से पढ़नी है, तो जिसने पढ़नी है वो सफ़र में जमात के साथ फिर जाके दोबारा पढ़ेगा, ये तो उसका दिल लगा हुआ है ना। तो ऐसी बातें की, हालांकि याद रखिए मदीना में दो मस्जिदें थी उस वक़्त, मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा, और उस वक़्त की जो आबादी थी उसके एतबार से ये दोनों मस्जिदें बिल्कुल काफ़ी थी। जो मदीना के इर्द गिर्द के लोग थे वो मस्जिद नबी में आ जाते थे, जो कुबा से ज़रा इर्द गिर्द थे वो उधर चले जाते थे, दैट्स इट, तीसरी मस्जिद की तो ज़रूरत नहीं थी। अगली आयत देखिए, अल्लाह अपने नबी से फरमाते हैं, आयत 108, ला तकुम फी ही अबदा, ए नबी आप इसमें कभी खड़े ना हों। अब हुआ क्या कि जब आप तबूक की तैयारियों में थे तो उन्हीं दिनों में ये बिल्डिंग तैयार हो रही थी, अल्लाह के नबी के पास मुनाफिकीन आए, दरख्वास्त ली कि आप ज़रा इस मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, बड़ी बरकत होगी। ये था एनओसी कि एक दफ़ा नबी के कदम उधर लग गए तो कहेंगे अल्लाह के नबी को पता है, उनके अप्रूवल से हो रहा है। आज भी लोग ये मिसयूज़ करते हैं कोटेशंस, पूछ लिए बता दिए, अच्छा वो कान से गुजारने को कहते हैं बता दिया पूछ दिया, उनकी मर्ज़ी शामिल है, गलत कहते हैं। याद रखिए, जहाँ आपकी नीयत दीन के काम की है ना, वहाँ इनफरादी फैसले नहीं हो सकते। सॉरी, मैं नहीं मानती इस चीज़ को, मुझे तो लगता है अब मुझे तफसीर कराने से ज़्यादा मुझे ये चीज़ें लोगों को पढ़ानी चाहिए, जितना मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट इन सालों में गुजर चुकी हूँ प्रोसेस से, शीशे की तरह मुझे चीज़ें दिख रही होती हैं, लोगों के चेहरों पर बातें उनके अंदर की खुली होती हैं, एक कुछ बोलता है, दूसरे से मिलो कहानी कुछ और, तीसरे से पूछो कुछ और, दूसरे कहते आपको कैसे पता चलता है, मैंने कहा ये आपका पहला केस है मेरा पहला नहीं है। जैसे वल्लाह की डॉक्टर को बीमारी पहले ही पता लग जाती है, या लॉयर को पता चल जाता है ना कि कसूर किसका होगा, ऐसे अब मुझे दूसरी जगहों से अपने इर्द गिर्द के इशू नज़र आने लग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान छुप नहीं सकता, जो असल होती वो कभी नहीं छुपती। कस्में की वाला यहलिफुन्ना, कसम खा के कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी हम बहुत सच्चे हैं, बट अल्लाह ताला कहते हैं ला तकुम फीही अबदा। वो चाहते क्या थे, एक दफ़ा अल्लाह के नबी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई ये एक हमने उधर भी मस्जिद खोल दी, उधर भी जाएं। ये देखिए अब कितने अच्छे बन रहे, इज्जत दे रहे हैं नबी को कि नहीं, या फिर लिखिए हर इन्वाइटी जो होता है वो इन्वाइटर नहीं होता, वो नहीं चाहता ये आए, मकसद कुछ और है। बाज़ लोग सिर्फ चंदा जमा कराने के लिए आपको बुलाएंगे, आप आके एक पुरजोश तकरीर करें, चंदा कर जाएं, और आए जी ज़रा हमारी इमारत मशहूर करा दें, आए जी ये करा दें, तो हर नेकी नेकी नहीं होती। मैं तो खौफजदा हो जाती हूँ इस मौजू को पढ़कर कि पता नहीं हमारे अंदर से नंबर कितने निकलने हैं इस पढ़ने पढ़ाने के क़यामत के दिन, खोट ही ना हो सारा, अपने ही ना कहीं फायदे लेके हम बैठे हों और नाम दूसरों को नेकियों का और करने वाले हों। और जी आपकी तो बड़ी बरकत होगी। अल्लाह के नबी कह लीजिए कि समझ जाते थे बात, लेकिन आपको अल्लाह ने मामला फहमी दी थी। आपने उन्हें कहा कि अभी मैं तबूक की तैयारियों में, वापस आकर देखेंगे। टाल दिया आपने उनको, यानी आप नहीं गए। अभी वापस आ नहीं रहे थे, जैसे ये वापसी की आयतें चल रही हैं ना, जहाँ अल्लाह ने या तज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम में मुनाफिकों के हालात खोल दिए कि अभी बड़े उजर आएंगे, तो ये आयतें भी उतर गई। तब उतर रही हैं कि अब आप मदीना जाने वाले हैं, पहुँचने वाले हैं। देखिए ऐसा ना कीजिएगा कि वहाँ चले जाएँ, आपने वहाँ नहीं जाना। क्यों? ला मस्जिद तकवा मिन अव्वल यौमिन हक्कुन तकूम फीह। यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से ही तकवा पर रखी गई थी, वो ज़्यादा मुस्तहक है कि आप इसमें खड़े हों, नमाज़ पढ़ें। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा। अव्वल यौम, आपको तो पहली मस्जिद है दुनिया में। मस्जिद नबी से भी पहले इसकी बुनियाद थी। अल्लाह के नबी सफ़रे हिजरत में पहले कुबा में गए थे, ये आपका ननिहाली गांव था, और वहाँ कुछ दिन रहे और वहाँ आपने मस्जिद बनाई। अच्छा, हम कहीं जाते हैं, जाने से पहले भी कहते हैं हम कहाँ रहेंगे, अपना घर ना ले लें। पहले हम घर की चाबियां लेके आते हैं, फिर जाने के इरादे करते हैं। अल्लाह के नबी ने कुबा में रुके तो अपना घर नहीं बनाया कि एक इधर भी कमरे का घर बना दो, मुझे भी कभी आऊँगा तो किधर रहूँगा। मस्जिद बनाई। और मस्जिद नबी मदीना में गए तो पहले तो अल्लाह के नबी को अपना घर बनाना चाहिए था कि नहीं? सोचें ज़रा। देखे ना, आपके साथ उस वक़्त अजवाज में सारी नहीं भी थी, लेकिन हज़रत सौदा थी, हज़रत आयशा से रुखसती होने वाली थी। अल्लाह के नबी तो मस्जिद में जाके सबसे पहले अपना घर बनाना पड़ता, चाहिए था उनको, किधर रहूँगा। देख लीजिए, सोच का फ़र्क है सिर्फ। कुछ अपने घरों के लिए जीते हैं, कुछ अल्लाह के घरों के लिए जीते हैं। कुछ अपने लिए घर बनाते हैं, कुछ अपने लिए घर नहीं बनाते कि जिधर घर बन गया उधर दिल लग जाने, उधर पाँव जम जाने, उधर लाइबिलिटीज़ हो जानी है। तो अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाकर ये रस्म डाल दी, कह लीजिए कि जहाँ जाओ पहले मस्जिद ढूंढो। किसी शहर में जाते हो पहले गूगल में सर्च करो कि इधर मस्जिद कौन सी है। और अल्लाह गवाह है, ट्रैवलिंग में जहाँ भी पड़ाव किए मस्जिद के सोच से किए, किधर मस्जिद है किधर नहीं। हर वक्त सफ़र में मस्जिद नमाज ही हो रहा होता है, किधर रुकें कहाँ रुकें, अच्छा वो कहाँ पढ़ेंगे तो वो कहाँ पढ़ेंगे। और किसी ने इस साल जो हमारे साथ ट्रिप पे गई थी तो उन्होंने शेयरिंग भी की थी कि ज़िंदगी का पहला ट्रिप है मेरा, कि मैंने पिकनिक पे या ट्रैवलिंग पे या अपने कह रहे ट्रिप पे आए हुए, नमाज भी पढ़ी है जमात से। लोगों के तसव्वुर में भी नहीं है कि हम कहीं जाके नमाज भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं अब आए हैं सफ़र पे, बाद में पढ़ेंगे। तो बहरहाल नबी सल्लम का ये अमल इसमें आ गया। और याद रखिए कि कुबा जो है ना, ये मदीना की आबादी से 3 मील के फासले पर था, तो पहला पड़ाव था वहीं रखा। अल्लाह ने तारीफ कर दी, फी ही रिजाल युहिब्बू यततहरू, इसमें वो लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो बहुत पाक रहें। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो बहुत ज़्यादा पाक रहते हैं। कुबा वालों से पूछा गया कि ये बताओ कि आपकी तहारत की अल्लाह ने इतनी तारीफ़ क्यों की? तो उन्होंने कहा कि हम जब कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं पहले मिट्टी के ढेले इस्तेमाल करते हैं, जो कि उस दौर का रिवाज था, मिट्टी से साफ़ करते थे, सहरा थे, पानी था नहीं। लेकिन कहते हैं फिर हम उसके बाद पानी से भी तहारत हासिल करते हैं। तो यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, देखिए यततहरु और मुतहरीन, और यही पसंदीदा अमल है। दीन पाकीज़ा दीन है, मिट्टी से साफ़ कीजिए, जिस्म को साफ़ करें। इसमें पूरे तहारत की बुक के मसाइल आप पढ़ सकते हैं, कैसे बावजू रहना, कैसे इस्तंजा करना, और कैसे गुसल और जनाबत, और ये सारी हकीकतें इस्लाम का मिजाज खोल देती हैं। तो बहरहाल यहाँ भी इतनी बात समझ लीजिए कि उन लोगों की पाकी की तारीफ़ की गई है। और मैं और आप अपने लिए ये लिख लें कि घर को साफ़ रखें, क्योंकि वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। बिखरे हुए और बदबू वाले और लहसुन प्याज की स्मेल वाले घरों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती, वहाँ तो इबादत में दिल नहीं लगता, खुशू खुदू नहीं होगा। घरों में बच्चों ने गंद डाला हुआ, उनकी गंदगी पड़ी हुई, उनके खिलौने पड़े हुए हैं, चीज़ें बिखरी, बचा खाना पड़ा, और किचन में आधा खाना बच्चों की प्लेटों में इधर गिरा उधर पड़ा, और कहीं आपका वो ग्रीन बैग जो है स्मेल दे रहा है। ऐसे घरों में फरिश्ते नहीं आते और अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती। तो कम अज़ कम इतना ही इससे आज सीख लें हम कि हमने हत्तुल बसा जो हम कर सकते हैं घर को उतना साफ़ रखना है।